क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय के पाक्षिक कार्यक्रम क्षितिज में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी न किसी साहित्यकार को, लेखक को या जो भी हिंदी से जुड़ा हो, उनको लेकर के हम ये कार्यक्रम किया करते हैं। जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में भी बताया कि विश्व हिंदी सचिवालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो कि हिंदी के वैश्विक प्रसार में रामकथा की भूमिका पर आधारित थी, उसका कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। पिछली कड़ी में तो हमने आपको एक मेहमान से मिलाया, आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत जी। आप लोक गीतों की गायिका एवं लेखिका भी हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है नीतू जी। आपका जो विषय थे वो लोक गीतों में श्री राम और माता सीता का जीवन, इस पर आधारित रहे। तो श्रोताओं, सबसे पहले तो हम नीतू जी से कहेंगे कि वो अपना परिचय, अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को स्वयं बताएं कि वो कहाँ से हैं और उनके गीत किस पर आधारित हैं।
सबसे पहले तो क्षितिज कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और मैं नीतू कुमारी नवगीत एक लोक गायिका हूँ, साथ ही साथ लेखन का शौक रखती हूँ, पेंटिंग भी बनाती हूँ। और अभी मैं स्वच्छता की पटना नगर निगम द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हूँ और स्वच्छता के लिए मैं काफ़ी कार्य कर रही हूँ
जी।
इसके अतिरिक्त मैंने कई सारे सम्मान भी पाए हैं गायन के क्षेत्र में। और मेरा उद्देश्य है संस्कार गीतों को पुनः स्थापित करना और नई पीढ़ी तक अपने संस्कार गीतों को हस्तांतरित करना, क्योंकि आज आप देखिए हम बिल्कुल सांस्कृतिक ह्रास के कगार पर खड़े हैं। ऐसे में लोक संस्कृति को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपनी पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को लोकगीतों से जोड़ें, क्योंकि लोकगीत लोक के गीत होते हैं
जी।
और आप अगर चाहते हैं कि दादी नानी की कहानियां सुरक्षित रहें, आप यदि चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों के दिए हुए संस्कार और उनके दिए हुए जो भी शिक्षा है
जी,
तो वो सब सुरक्षित रहे, तो लोकगीतों को ज़रूर सुने और उन्हें आने वाली पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को ज़रूर सुनाए।
बिल्कुल, ये तो आपका उपकार होगा आने वाली पीढ़ी पर कि वो अपने पूर्वजों की जो संस्कृतियाँ हैं उनको संजोए रखे, बढ़ाए आगे आने वाली पीढ़ी को। जब तक आपकी पिछली पीढ़ी बीच में आएगी और बीच वाली पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाएगी, तब तक ये संस्कृतियाँ जो हैं आगे नहीं बढ़ पाएंगी। एक प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि इतना अच्छा काम संस्कारों को संजोना, संस्कारों को दूसरी पीढ़ी को देना
जी,
ये आपको कहाँ से सूझा, आपने कहाँ सोचा कि आप ये काम करें
जी? मैंने देखा कि पाश्चात्य संस्कृति से हमारी जो आज की पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित होती जा रही है
जी।
उन्हें बहुत कुछ नहीं पता, रामायण नहीं पता, गीता नहीं पता और महाभारत भी नहीं पता। मतलब कहीं भी उन्हें जो हमारे जो पौराणिक आख्यान हैं, हमारे जो संस्कार हैं, गीतों की तो बात छोड़ दीजिए, जो बड़ों का आदर करना, इज्जत करना, ये सब भी उन्हें जो है सिखाना पड़ता है।
बिल्कुल,
या बहुत सारे पेरेंट्स के पास आज समय नहीं रह गया,
समय नहीं है। बिल्कुल,
पहले ऐसा ज़माना था कि पति और पत्नी दोनों नौकरी नहीं करते थे
जी।
माताएं घर में रहती थी, तो जब वो घर में रहती थी तो बच्चों को संस्कारित करती थी, संस्कार देने का काम करती थी। और आज देखिए, जबकि दोनों नौकरी करते हैं, ऐसे में हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनके वो आदि होते जाते हैं, क्योंकि एक समय के बाद उन्हें देखने के लिए कोई होता नहीं है।
बिल्कुल,
और नौकरों के भरोसे बच्चे क्या संस्कार सीखेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उसे संस्कार देने के लिए स्कूलों में भी यह चीज़ अनिवार्य कर देना चाहिए और संस्कार गीतों का भी मुझे लगता है कि कुछ प्रावधान होना चाहिए, जिससे हम बच्चों को संस्कार दे सके, अपने अपने पूर्वजों के बारे में बता सके और अपने जो पुराने ग्रंथ हैं, पुराने काव्य ग्रंथ हैं जो मानक समझे जाते हैं, हमारे जीवन का आधार है, हम वो सब भी उन्हें, जैसे राम सीता की कहानियाँ वगैरह भी उन्हें समझाएं, उन्हें सुनाएं, उनके त्याग तपस्या हर कुछ को बताएं ताकि उनमें थोड़ा धैर्य आए।
जी, से आपके मन की बात तो हमने जानी, लेकिन ये सिर्फ हमने जानी, और वो संस्कार गीत जो हैं
जी
हमने तो सुने, लेकिन हम चाहेंगे कि वो हमारे श्रोता भी सुने, तो आप दो एक संस्कार गीत जो हैं वो हमारे श्रोताओं के लिए सुनाइए।
श्री रामचंद्र जी का एक बहुत ही प्यारा सा सोहर है।
जी,
सोहर गाया जाता है बच्चे के जन्म होने के बाद।
जी,
तो जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाने की परंपरा है, तो चलिए मैं एक छोटा सा सोहर सुनाती हूँ।
जी,
धन धन नगर अयोध्या के धन राजा दशरथ रे, ललना रे धन रे कौसल्या रानी के भाग की राम जन्म भेल रे, धन रे कौसल्या रानी के भाग की राम जन्म भेल रे, नौमी नक्षत्र राम जन्मल दिन दिन बढ़ता रे, ललनर गुनी दे तू रामक लग्न कवन तिथि जन्मल रे, धन रे कौसल्या रानी के भाग की राम जन्म भेल रे। और देखिए ये सोहर मैं अभी आपको सुनाई, और सोहर के अलावा भी बहुत सारे विवाह गीत हैं, परीक्षण का गीत है और हल्दी का गीत है, और ये सब गीत जो है हमारे देखिए विवाह से भी लुप्त तो होते जा रहे हैं।
यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि मॉरिशस में भी जो है इस तरीके के गीत प्रचलित हैं, विशेषकर शादी ब्याह में जो है ये गीत गाए जाते हैं, और आपके एक दो गीत सुनकर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनमें एक कोई एक रिश्ता जुड़ा हुआ है।
एकदम, मॉरिशस देखिए वैसे तो हिंद महासागर जो है हमें जोड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि रामायण जोड़ता है हमें।
जी,
और अगर वो रामायण नहीं होता और यहाँ जो भी आए थे गिरमिटिया, तो वो अगर रामायण लेकर नहीं आते तो हमारा जो इतना प्यारा सा सुंदर सा संबंध है वो नहीं बन पाता।
बिल्कुल, तो संबंध को और आगे बढ़ाते हैं और उसी विवाह को लेकर के एक दो अच्छे अच्छे से गीत जो है आप उनकी थोड़ी सी झलक हमारे श्रोताओं को अवश्य दें।
जी जी जी, अग्मय हरे दी हर दिया दुभ पात रे ना, अग्मय हरे दी हर दिया दुभ पात रे ना, अग्मय हरे दी हर दिया दुभ पात रे ना, अग्मय हरे दी हर दिया दुभ पात रे ना, अग्मय हरे दी हर दिया दुभ पात रे ना, कहवा के चिकन माटी कहा के कुदार हे, कहवा के सात सुहागिन माटी कोड़े जात हे, कहवा के सात सुहागिन कमला के पियर माटी वहाँ के कोदार है, कमला के पियर माटी वहाँ के कोदार है, जनकपुर के सात सुहागिन माटी कोड़े जात है, जनकपुर के सात सुहागिन।
आपने अभी माटी कोड़े की बात की, तो ये जो है मॉरिशस में भी होता है माटी कोड़वा जिसको बोलते हैं विवाह के समय।
जी जी,
और जैसे कहा जाए तो अगर एक गीत और मैं आपसे सुनना चाहूँगी, वो विदाई गीत कोई हो आपके पास, तो वो गीत हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाइए।
अच्छा, विदाई गीत तो है, मुझे एक मिनट स्मरण करने दीजिए मुझे। आम से मीठे महुए बाबा, आम से मीठे महुए बाबा, अरे बाबा ना 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 ना, थोड़ा सा भूल रही हूँ।
कोई बात नहीं। इससे जुड़ा हुआ और कोई विवाह गीत हो या और कोई संस्कार जिससे लगे हुए गीत हो उनसे वो अगर आप कोई सुना सकें।
जी जी। और देखिए मॉरिशस में मैं बारिश देख रही हूँ, यहाँ का मौसम तो इतना खुशनुमा है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, तो चलिए कजरी सुना देती हूँ।
जी बिल्कुल,
क्योंकि बारिश में
यहाँ पर कजरी भी काफी प्रचलित रही है अपने समय में।
हाँ हाँ।
तो आशा है श्रोताओं को कजरी भी बहुत पसंद आएगी।
कैसे खेले जइबो, हाँ कैसे खेले जइबो, सावन में कजरिया बदरिया घिर आइल नदी। कैसे खेले जइबो सावन में कजरिया बदरिया घिर आइल नदी। तू ता जात हौ अकेली केहू संगी ना सहेली, तू ता जात हौ अकेली केहू संगी ना सहेली। चला रोक लई है तोहरी डगरिया बदरिया घिर आइल नदी।
बहुत सुंदर। मन तो करता है कि आपको सुनते रहें सुनते रहें, लेकिन समय की तो पाबंदी है। श्रोताओं आपने इतने सुंदर सुंदर गीत सुने। एक छोटी सी बात और आपसे जानना
जी,
चाहेंगे
जी, जी,
वो ये कि आपने अभी बताया कि आप स्वयं गीत लिखती हैं।
जी जी।
तो कहाँ से भाव उत्पन्न होते हैं या क्या आपको लगता है किस संस्कार पर गीत लिख सकती हैं और कैसे लिख?
मैंने बेटियों पे बहुत लिखा है
जी,
और समय मुझे लग रहा आपके पास है नहीं, नहीं तो फिर अगले अच्छा चलिए मैं दो लाइनें बस जल्दी से सुना देती हूँ। यार वो हमारे देश में बिटिया का मान हो, यार वो हमारे देश में बिटिया का मान हो, जहनों में बेटो जितना ही बेटी की शान हो, जहनों में बेटो जितना ही बेटी की शान हो, यार वो हमारे देश में बिटिया का मान हो।
लगता तो है कि और भी अभी बहुत से गीत होंगे आपके पास, लेकिन उसके लिए फिर कभी। आज श्रोताओं आपने इतने सुंदर गीत सुने नीतू कुमारी नवगीत जी से, आशा है कभी फिर मौका मिला तो अवश्य सुनेंगे। तब तक के लिए श्रोताओं कल्पना को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
नमस्कार, प्रणाम।